क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।
क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।
ओम शांति। मीठे बाबा से हम सब ने दो दिन पहले ही जो मुरली सुनी, उस मुरली में हम उन कुछ मुरली की उन बातों को लेते हुए आज हम ऐसी चर्चा करेंगे कि उस मुरली का महत्व भी बीच में ले लें और साथ साथ ये जो अपना जीवन है, वर्तमान जीवन है, इसको हम कैसे सदा स्वस्थ बना सकें, सदा खुशनुमा बना सकें। सभी चाहते हैं ना स्वस्थ रहना, सदा खुशनुमा रहना चाहते हैं सभी, सभी चाहते हैं। तो वो कैसे हमारा जीवन बन जाए, तो आज हम इसी बात पर कुछ चर्चा करें आपसे। सबसे पहली जो बात इस मुरली में, जो 15 दिसंबर को जो बाबा ने मुरली चलाई, मीठे बाबा ने जो मुरली चलाई, सबसे जो मुख्य और महत्वपूर्ण बात क्या थी कि बाबा ने कहा इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है इस समय? सबसे अमूल्य खजाना है समय। कौन सा वाला समय? पुरुषोत्तम संगम युग का यह अमूल्य समय। ये समय क्यों अमूल्य है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समय में ही 5000 साल की प्रलब्ध, ये थोड़ा समय समझो, समझे अभी पता नहीं कितना समय है, 2 साल है कि 4 साल है या 5 साल है, पता नहीं है ना, पता है क्या, या 1 दिन है या 10 दिन है, ये भी नहीं पता है। पता है किसी का हो सकता है 1 ही दिन हो, किसी के 5 दिन हो, किसी के 10 दिन हो, किसी का 1 साल हो, किसी के 2 साल हो, किसी के 5 साल हो। तो ये जो जो भी 4-5 साल का समय मैक्सिमम जो बचा है, ये समय में हमको पूरे 5000 वर्ष की प्रलब्ध बनानी, 5000 वर्ष की, अर्थात जो इस जन्म में भी जो हमें प्राप्ति हुई है वो भी कब बनाई थी हमने प्रलब्ध, वो भी अभी पिछले संगम पर बनाई थी हमने। तो अभी हमें इस संगम के थोड़े से समय पर हमें इतनी सारी प्रलब्ध बनानी। बाबा ने कहा इस मुरली में, याद होगा आपको, इस संगम का एक समय भी, एक सेकंड भी प्रलब्ध और प्राप्तियों के हिसाब से क्या वैल्यू है इसकी, 1 वर्ष के बराबर है। अर्थात हम 1 सेकंड में चाहें तो क्या कर सकते हैं, बाबा की याद से हम अपना भाग्य 1 वर्ष के लिए बना सकते हैं, और चाहें तो 1 वर्ष में हम विक्रम करके अपना भाग्य गंवा सकते हैं, है ना। तो अब ये समय इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय का 1-1 सेकंड अति अति कीमती है। तो इस समय को हम कभी सफल कर सकते हैं ये समय, और बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है, है ना, बाबा ने कहा ना तीव्र पुरुषार्थी बनना है। और तीव्र पुरुषार्थी की 2 बातें बताई, कौन से 2 लक्षण विशेष कौन से बताए, नष्टो मोहा और एवर रेडी। नष्टो मोहा और एवर रेडी, है ना। तो नष्टो मोहा में 2 बातें मुख्य बताई, एक देहभान से नष्टो मोहा और देहाभिमान से, और एवर रेडी ना सदा रेडी, एकदम से रेडी, अचानक कुछ भी होगा तो वी शुड बी रेडी। अब ऐसी जो बाबा ने हमारे सामने स्थिति रखी है, तो उसके लिए हमारे 3 मुख्य बात, एक तो आत्मा हो गई, आत्मा भी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति कुछ कर सकता है, अगर स्वस्थ ना हो, बीमार हो, आप बिस्तर में पड़े हो तो क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं, कोई पुरुषार्थ कर सकेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा हो, आप नष्टो मोहा बन सकेंगे, वो कहें कोई नष्टो मोहा जाओ ना, सिर दर्द क्या हो गया, नष्टो मोहा जाओ, तो फिर क्या होगा, आपको जोर से सिर में दर्द हो रहा, कोई बोले आपको नस्ट्रम हो जाओ तो क्या करेंगे आप? सिर दर्द ठीक हो जाएगा आपका या बढ़ जाएगा? सिर दर्द हो रहा हो एवरेडी बन सकते हो आप? हार्ट में दर्द हो रहा हो, सांस ऊपर नीचे, सांस का अटैक आ गया होगा आपको, आपको तो एवरेडी हो सकते, नस्ट्रोमा होंगे, तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है? हो सकता है? जो समझते सिर दर्द होते होते भी हम नस्ट्रोमा रह सकते हैं, हाथ उठाओ, या बाबा को याद कर सकते हैं, हाथ उठाओ। बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से सिर ऐसे फट रहा है जैसे एकदम से। बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। देह के अंदर कोई बीमारी आ जाए या मन में कोई चिंता लग जाए, मन में कोई व्यर्थ या नेगेटिव आ जाए, तो हम बहुत मुश्किल हो जाता है पुरुषार्थ करना, बहुत बहुत भारी लगता है। तो अब हम ऐसा देखें कि हमें आत्मा हमारी स्वस्थ रहे, आत्मा स्वस्थ रहे। आत्मा की मुख्य शक्ति है मन, बुद्धि तो बाबा ने दिव्य हमें दी, हमें हमें बाबा ने जन्मते ही कौन सी चीज दी है? हमें डिवाइन इंटेलेक्ट है ना, बुद्धि दिव्य दी है हमें, बुद्धि तो दिव्य मिली, किंतु अब हमें मन को और संस्कारों को परिवर्तन करना है ना, और फिर मन और संस्कार को परिवर्तन करने के साथ साथ हमें इस तन में भी परिवर्तन, अपने कर्मेंद्रियों को भी परिवर्तन करना है, अपनी आवश्यकताओं को भी परिवर्तन करना है, अपने आसपास के वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। तो सबसे पहली बात तो मुख्य है हमारा आत्मा, तो मैं आत्मा हूं, इसको भी हमें स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है और तन को भी स्वस्थ, तीनों को स्वस्थ रखना है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं, परिभाषा में जाएं, स्वस्थ की परिभाषा में या हेल्दी शब्द की परिभाषा में जाएं, तो हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना है, हील डाई, दो शब्द जुड़े तो हेल्दी शब्द बना है। हील डाई का अर्थ क्या है? हील योर सेल्फ, अर्थात मैं खुद अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हूं। मेरी हेल्थ के लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार? हमारे परिवार वाले, डॉक्टर्स, यज्ञ जिम्मेवार है, हमारे देश की गवर्नमेंट जिम्मेवार है, नहीं, हम खुद जिम्मेवार हैं। और बीमारी पैदा करने के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर मुझे सिर में दर्द हुआ उसके लिए जिम्मेवार कौन? मैं खुद स्वयं। तो बीमारी पैदा करने के लिए भी जिम्मेवार कौन? मैं खुद। और ठीक करने के लिए जिम्मेवार कौन? मैं स्वयं। अब हम देखें कौन किसको ठीक करे, हील दाई सेल्फ है ना, हील योर सेल्फ। अब कौन किसको ठीक करेगा? आत्मा यहां है और आत्मा को किसको ठीक करना है? मन को और शरीर को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे हम? कैसे ठीक कर देखें, हम कैसे ठीक करते हैं, हम अधिकतर कैसे ठीक करते हैं देखें जरा। जो रोल हमें मिला सोसाइटी में, जब उसके हम कॉन्शियस बन जाते हैं, होते बीमार कर रहे होते हैं। आप देखो हमारा एक, हमारे पास एक हार्ट है, ये हार्ट हमारा और हमारी सारी बॉडी में खून पंप करता है। और अगर हम सारी बॉडी देखो, कहीं से भी आप काटें, थोड़ा सा सुई भी लगाएं तो क्या होगा वहां पर? किसी भी बॉडी, किसी अंग में भी थोड़ी सुई लगा के देखो, क्या निकलेगा वहां से? खून निकलेगा। अर्थात खून की नलिकाएं, छोटी छोटी नलिकाएं सारी बॉडी में फैली हुई हैं, सारे शरीर में, एक एक कहीं भी देख लो, चाहे अंदर या बाहर, सब जगह खून की नलिकाएं फैली हुई हैं। अगर सभी खून की नलिकाओं को एक से आगे जोड़ दें, तो 60,000 मील लंबी पाइपलाइन बन जाती है। कितनी बड़ी? 60,000 मील, माइल्स। पूरी धरती जो है ना, पूरी पृथ्वी है, उसका सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि जो है 28,000 माइल है। अर्थात हमारा हृदय, हमारी जो उसमें इतनी बड़ी पाइपलाइन में, 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में, एक मिनट में 70 बार खून भेजता है। कितनी बार? एक मिनट में 70 बार। अगर आपको सारी धरती का चक्कर लगाना हो तो कितनी देर लगेगी? एरोप्लेन से कितनी देर लगेगी? और हमारा शरीर, हमारा हार्ट जो है एक मिनट में 70 बार, मतलब एक सेकंड से भी कम समय में खून को यहां से सारी बॉडी में भेज के और वापस भी आ जाता है, वापस हार्ट गया वापस, एक सेकंड से भी कम समय में। और उस एक सेकंड के समय में ही हमारी जो जो खून गया उसमें से जो भी ऑक्सीजन है, प्रोटीन है, वसा है, ग्लूकोज है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सेल्स ले भी लेती हैं और गंदगी भी उसमें छोड़ देती हैं, और किडनी में भी खून चला जाता है, वहां से साफ भी हो जाता है एक मिनट, एक सेकंड में। एक सेकंड कितना बड़ा होता है, एक सेकंड कितना बड़ा होता है, एक सेकंड से भी कम समय में। तो हार्ट कितना अच्छा, कितना काम कर रहा है आप सोचिए, एक सेकंड में एक बार में सारी बॉडी में खून एक सेकंड से कम समय भेज दिया, एक मिनट में 70 बार भेज दिया। और अगर आपने जल्दी की, चिंता की, गुस्सा किया या उदास हो गए, किसी बात को फील किया, तो क्या होगा, ऐसे केमिकल निकलते हैं, हमारे हार्मोन्स निकलते हैं या हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, एड्रिनल ग्लैंड से, जो हार्ट की धड़कन को बढ़ा देते हैं। एक मिनट में 70 बार की बजाय 80 बार, 90 बार, 100 बार, 110 बार। पहले ही हार्ट कम काम कर रहा था क्या, मुझे बताइए, कम कर रहा था पहले काम, पहले ही घोड़ा दौड़ रहा खूब जोर से दौड़ रहा, और उसको ऊपर हंटर मार रहे हो, और तेज दौड़, और तेज दौड़, क्या फिर क्या होगा, क्या होगा। तो ये आपको दया आती है अपने ऊपर, नहीं आती है? अपने हार्ट पे दया कभी कभी आती है, नहीं आती है? आती है दया कभी कभी, दया आती नहीं, दया नहीं आती तभी आप गुस्सा, हम गुस्सा करते हैं। नहीं सोचो ना, समझो ना, ये बात पहले समझ लेनी चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा हार्ट इतना काम तो पहले से ही कर रहा है, और मैं गुस्सा, एक बार गुस्सा किया तो क्या हुआ, गुस्सा करने से हार्ट की धड़कन 70 की बजाय 100 हो गई।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
ओम शांति। मैं आपसे बात कर रहा था कि आत्मा यहां है और हमारे शरीर में 70,000 बिलियन सेल्स हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन 6.5 बिलियन है, सिर्फ 6.5 बिलियन, 650 करोड़। और हमारी कितनी पॉपुलेशन है, हमारी बॉडी में कितनी पॉपुलेशन है, 70,000 बिलियन। और 70,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सेल्स, हर सेल कार्य कर रही है, हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, हर विटामिन ए बी सी डी जितने भी विटामिन्स हैं, ई के सारे मिनरल्स, मतलब जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, जितने भी मिनरल्स हैं, 50 से ऊपर मिनरल्स हैं, वो बॉडी के एक सेल को चाहिए। एक भी कम पड़ जाए तो वो सेल्स ठीक काम नहीं कर पाते हैं। वो कब तक ठीक काम करते हैं, जब तक आत्मा है। आत्मा है तो चल रहा है, आत्मा नहीं है तो सब कुछ बंद हो जाता है। वो हर सेल अंदर ग्लूकोज लेती है, प्रोटीन लेती है, फैट लेती है, विटामिन मिनरल लेती है, उनको यूज करती है, उससे एनर्जी ड्राइव करती है, और फिर वो सेल्स जो टॉक्सिन्स हैं उसमें से टॉक्सिन निकलते हैं, जो पॉइजन्स निकलते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कई ऐसी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको बाहर निकालती है। वो सेल्स डिविजन करती हैं, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8 बनती हैं, नई सेल्स पुरानी मर भी जाती हैं तो उनको सफाई भी, उनकी सफाई भी करती हैं। वो सारा प्रोसेस क्यों चल रहा है, क्योंकि आत्मा यहां है तब चल रहा है, नहीं तो नहीं चले। आत्मा निकल जाए तो कुछ चलेगा क्या, कुछ भी नहीं चलेगा। अर्थात आत्मा चला रही है इस पूरी एक एक सेल को, और कितना थोड़ी सी जगह में कितना सिस्टमेटिक तरीके से चला रही है। और माध्यम है मन। माध्यम क्या है? चलाती कैसे आत्मा? मन के थ्रू, मन के थ्रू चला रही है। अब मन क्या चीज है? मन क्या चीज है बताओ? जानते हैं मन क्या है? आत्मा की एक शक्ति है। उसकी उसमें क्या क्या चीजें, मन में क्या क्या बातें आती हैं? आज बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा कौन है? धोबी भी है ना, बाबा ने कहा ना, धोबी भी है ना बाबा। तो बाबा ने कहा कौन से कपड़े धोता है बाबा? आत्मा कपड़े धोता है। कौन से वाले कपड़े हैं आत्मा के? आत्मा कितने कपड़े होते हैं? पांच विकार नहीं, आत्मा कपड़े कितने हैं आत्मा के? बाबा ने कहा आत्मा कपड़े धो करके बाबा कपड़े धोता है ना, उनको धोकर क्या बना देता है? कंचन बना देता है। कौन से कपड़े हैं आत्मा के? मन बुद्धि संस्कार आत्मा के कपड़े हैं ना, तीन शक्तियां ना आत्मा की, तो उनको धो देता है। मन में चार बातें आती हैं, मन में इंग्लिश में हम उसको कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। अर्थात इंग्लिश में कहें तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, ये मन के चार एस्पेक्ट है। मन में चार बातें हैं और बीच में बुद्धि है। यहां बीच सबसे पहले तो बुद्धि आती है, जो बाबा जिसको हमें पहले बाबा हमें बुद्धि को ही परिवर्तन करता है, और उसके बाहर मन है, और जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। और तीसरा है मेटीरियल कॉन्शियस। मेटीरियल मन, जो भी चीजें हमारे पास हैं स्थूल में, जब उसको हम बुद्धि में भर लेते हैं तो भी हम विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। तो तीन हैं जहां से विकार आते हैं, देह से विकार आते हैं, रोल से भी विकार आते हैं, और मटेरियल अर्थात जो पदार्थ में बुद्धि रहती है उससे भी विकार आते हैं। तो पांचों विकार का जनक कहां पर है? देहभान, रोल कॉन्शियसनेस, और तीसरा पदार्थों की कॉन्शियसनेस, या जो हमारे पांच चीजें हैं उनसे। तो पांचों विकारों की जनक कहां है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, ये सब कहां से आती हैं? इन्हीं से पैदा होती हैं। क्योंकि तीनों की तीनों चीजें क्या हैं? अनस्टेबल है, विनाशी है तीनों। देह भी विनाशी है, आज कैसी है कल कैसी होगी, आज चेहरा सुंदर है कल झुर्रियां पड़ जाएंगी, आज बाल काले हैं कल सफेद हो जाएंगे, नहीं आज चश्मा नहीं है कल चश्मा लग जाएगा, आज दांत है कल दांत टूट जाएंगे, नहीं आज सुनता है कल सुनेगा नहीं, आज ऐसा होता नहीं होता है। तो सब ये अनस्टेबल है, जो भी चीज है सब कुछ ये दे अनस्टेबल है, रोल भी अनस्टेबल है, आज डॉक्टर हूं कल क्या पता क्या हो जाए, है ना, कल आज पिता हूं कल पिता ना रहूं, बच्चा ही ना रहे तो पिता कहां से रहा, है ना, जो भी रोल है, पति हूं क्या पता कल क्या हो, मतलब अनस्टेबल है ना। उसको हम फिक्स करने के लिए कोशिश करते हैं, जल्दी, चिंता, गुस्सा करके उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, बच्चे पे काबू करते हैं, है ना, थोड़े सा जिसने जिसके लिए हमने बहुत सारा किया वो आज हमारे लिए नहीं करता तो उदास हो जाते हैं, है ना, किसी के लिए हमने उसके लिए बहुत किया किंतु आज वो उल्टा करता है तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, देखो मैंने इसके लिए इतना किया आज मुझे ऐसा बोल दिया, है ना, होता नहीं होता ये कहां से जल्दी क्यों करते हैं? जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता हूं, देखो मैंने काम टाइम पे करके दिखाया, सबसे पहले करके दिखाया, रोल कॉन्शियसनेस। मटेरियल कैसा है? मटेरियल भी अनस्टेबल है, आज है कल नहीं है, आज नई नई कार ली कल उस पर किसी ने एक्सीडेंट कर दिया टूट गई, है ना, आज आपने बहुत अच्छा मकान बनाया पॉलिश करके बहुत सुंदर बनाया कल पुराना हो गया, तो मतलब जो भी मटेरियल है वो अनस्टेबल है। तो जहां अनस्टेबिलिटी होती है वहां इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, और जहां डर होता है वहां जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी होती है। तो तीनों ही कारण हैं, जड़ है इन सब विकारों की, सब नेगेटिव टेंडेंसीज की। और इसकी बजाय जब हम स्वस्थ, स्व माने आत्मा, स्थ माने जब अपने को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा समझने से क्या होता है, हम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा मरती है क्या? बदलती है क्या? बच्चे की आत्मा, बूढ़े की आत्मा, बच्चे की आत्मा इतनी सी, बूढ़े की आत्मा इतनी बड़ी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बच्चे की आत्मा ताजा दम, बूढ़े की आत्मा मुरझाई हुई, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। आप एग्जाम्पल देखते हैं, हमारी दादी जी है ना, 92 के एज में कैसी है, सबसे यंग है ना। आप लोग, हम लोग 4 बजे आने में मुश्किल हो सकती है, हम 4 की बजाय 4:15 आएंगे, वो दादी जी 4 बजे आके आराम से बैठ जाएंगे, है ना? नहीं, मुरली में 7 बजे आ जाएंगे एक्यूरेट, हम लोग लेट हो जाएंगे मुरली में। तो ये जो है आत्मा, जो है शक्तिशाली जो आत्मा है, उसका कोई कनेक्शन एज से नहीं है, है ना? रंग से नहीं है, कद से नहीं है, किसी बात से, पढ़ाई से नहीं है, लौकिक पढ़ाई से नहीं है, एकदम सब बात से उपराम है, है ना? और आत्मा, जब अपने को आत्मा समझा तो क्या फीलिंग आती है, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, इस हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक्यूरेट पार्ट बजा रही है हर आत्मा। कोई आत्मा किस पे आधारित नहीं है, भले वो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आप रहो नहीं रहो, उनको खाना मिलना, उनकी पढ़ाई करना, उनका सब कुछ उनके साथ निहित है, किसी पे आधारित नहीं है। आपने सुना कि कोई आदमी मर गया, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, सुना कभी? उसकी बीवी को आज से, जब से वो मरा है तब से वो उसकी बीवी को खाना ही नहीं मिला आज तक, 2 साल से खाना नहीं खाया उसने, ऐसा सुना है? तो कोई व्यक्ति किसी पर आधारित नहीं। भगवान ने सब, शिव बाबा ने जो ये ड्रामा बनाया है, बाबा ने एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है। हाँ, हम लोग समझते हैं कि ये जो कार्य चल रहा है ना, ये मेरे कारण चल रहा है, ये जो मेरा परिवार चल रहा है ना, मेरे कारण चल रहा है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मेरे कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात ठीक बात है। आज का इंसान ऐसा है, बैठा घोड़े पे है, गठड़ी कहां रखी है, अपने सिर पर, और पसीने पसीने हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इतना बोझ, इतनी जिम्मेवारी है ना, पसीने आ रहे हैं, घबरा रहा है, ठीक है ना? ऐसा आज ऐसा क्या इंसान, ऐसा ही करना चाहिए ना उसको, गठड़ी सिर पे रखनी चाहिए, नहीं कहां रखनी चाहिए, घोड़े पर रखनी चाहिए, बोझ तो घोड़े को लग रहा है ना, नहीं? तो स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस, बस एक ही अगर फार्मूला याद करें, हेल्दी माना सोल कॉन्शियस, एवर हेल्दी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस। और सदा सोल कॉन्शियस रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित, सदा स्वस्थ माना सदा आत्मिक स्थिति में स्थित। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित कैसे रह सकते हैं, सदा सोल कॉन्शियस कैसे रह सकते हैं? हम देह विमान में क्यों आते हैं? अगर आत्मा में ज्ञान भरा है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, सुख, आनंद और शक्तियां, तो ही सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। अगर ज्ञान की वजह थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, ज्ञान थोड़ा कम हो गया, यह है कि मैं तो, ये क्यों आता है, मैं ये हूं, क्यों आता है, जब सोल कॉन्शियस कम हुई, ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं, ये भूला तो क्या याद आया, मैं ये हूं। पवित्रता कम हुई तो क्या याद आया, अपवित्रता आ गई, पतितपना आ गया। शांति कम हुई तो क्या हुआ, अशांति आ गई। प्रेम कम हुआ तो क्या हुआ, क्रोध आ गया। सुख कम हुआ तो क्या हुआ, दुख आ गया। आनंद कम हुआ तो क्या हुआ, उदासी आ गई, है ना। शक्तियां कम हुई तो क्या हुआ, कमी कमजोरियां आ गई। ये कहां से मिलती हैं हमको, सातों चीजें कहां से मिलती हैं, परमात्मा से। सागर कौन है सातों का, परमात्मा। तो अगर परमात्मा की लगातार याद रहे, तभी हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। ये सोल कॉन्शियस रहने के लिए परमात्मा की याद जरूरी है, कभी कभी नहीं, निरंतर चाहिए। अगर निरंतर सोल कॉन्शियस रहे, परमात्मा की याद रहे, तभी हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? निरंतर ये याद रहे कि मैं उसका बेटा हूं। अभी तक हम अपने आप को क्या समझते थे, भिखारी, भक्ति में क्या समझा, भिखारी है ना, फकीर है ना, क्योंकि हम उसको भूल गए थे। अभी हम उसको लगातार उसको याद रखें कि मैं उसका उसकी संतान हूं तो ही, या उस सेठ का बेटा हूं, सबसे बड़े सेठ का बेटा हूं तो ही याद रहेगा मैं आत्मा हूं। ये याद रहे मैं उस परमात्मा की संतान हूं तो ही याद रहेगा मैं आत्मा हूं, उसको भूले तो आत्मा भी भूल गई। अगर उसकी याद निरंतर रहेगी तो ही हमें आत्मा याद रहेगी, नहीं तो याद भूल जाती है, तुरंत भूल जाती है। तो सदा सोल कॉन्शियस रहने के लिए आवश्यक है कि मैं सदा निरंतर परमात्मा की बाबा को याद, बाबा की याद में रहूं। इसलिए बाबा रोज कहता है बच्चे माँ में एकम याद करो, माँ में एकम याद करो, माँ में एकम याद करो। बाबा क्या कहता है, याद की फांसी पे लटके रहो, नहीं बोलता है? बोलता है नहीं बोलता? फांसी पे लगातार लटके रहना कि बीच में एक मिनट लटके फिर उतर गए, फिर एक मिनट लटके फिर उतर गए, क्या करते हैं? लगातार लटके रहेंगे तो ही सोल कॉन्शियस रहेंगे, अर्थात तभी सदा स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये एक अटेंशन रखनी बहुत बहुत आवश्यक है। तो आत्मा का स्वास्थ्य क्या बताया मैंने आपको, सातों एनर्जी से भरपूर। सातों एनर्जी से भरपूर कब रहेंगे, जब परमात्मा की याद रहेगी। और सबसे अच्छा समय कौन सा है परमात्मा की याद करने का, अमृत वेला। अमृत वेला क्यों, क्योंकि अमृत वेले का समय ऐसा है कि एक आपको पता होगा शायद, जब हमारे जब हम रात में सोते हैं ना तो हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। डेल्टा स्लीप क्या होती है, डेल्टा स्लीप वो होती है जिसमें हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 4 से कम हो जाती है। जैसे हार्ट का ईसीजी करते हैं ना, तो ऐसे ही ब्रेन का हम ईईजी करते हैं। तो जब 4 से कम स्पीड हमारी 1 सेकंड में 4 से कम ऐसे से करता है ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा फ्रीक्वेंसी, 3 या 2 या 3 बार करता है, वो गहरी नींद होती है। जब हम 4 से जब हम 4 बजे उठते हैं अमृत वेला, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 3 या 4 ही होती है। दिन के समय कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 15 से 20, 13 से 18 के बीच में होती है। और जब हम विकार के, जब हम चिंता भय में होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 30 तक हो जाती है, 19 से 30 तक हो जाती है। और जब विकार से ग्रसित होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विचारों से ग्रसित होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 45 तक हो जाती है, 50 तक भी हो जाती है, और 50 के ऊपर आदमी पागल हो जाता है। तभी कहते हैं विकार हमें क्या करते हैं, पागल बना देते हैं। विकार हमें कहां ले जाते हैं, पागलपन की तरफ ले जाते हैं। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है ना। शिव बाबा की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 0। और आत्मा की कितनी फ्रीक्वेंसी, आत्मा की भी 0 है, किंतु आत्मा जब शरीर में आई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 15 हो गई। सो गए तो कितनी हो गई, गहरी नींद में 2-3 हो गई। और जब विकारों की तरफ गई तो कितनी हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, 35, 40 हो गई। अब हमको क्या करना है, परमात्मा को याद करना है, शिव बाबा को याद। शिव बाबा कितनी फ्रीक्वेंसी, 0। तो सुबह आप उठे कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी, 3। तो 3 को 0 पे पहुंचना आसान है कि 15 को 0 पे पहुंचना आसान है। तो इसलिए सुबह सुबह अमृत वेला उठे, सुबह सुबह उठो, उठते ही 3 आपकी 3 फ्रीक्वेंसी पे उठे, जैसे बैठोगे ना ऐसे बैठते ही, तो ऐसे करते ही फील होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा 0, एकदम 3 से एकदम कहां पहुंच जाएंगे, 2-1-0 है ना, नजदीक है ना, ये पहुंचे यहां से, यहां 3 है, यहां पे 0 है, यहां 0 है, नीचे तो 0 है ना, यहां 1 है। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0, ब्रह्मा बाबा की 1, तो 3 से 1 पे पहुंचना कितना कितना सहज है ना, तो ऐसे पहुंच गए तो तुरंत कनेक्शन लग जाएगा। और वही कनेक्शन दिन में लगाने की कोशिश करो, आप 15 पे बैठे हो कितनी देर लगेगी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इधर ध्यान आ रहा है मैं तो शरीर हूं, मैं तो शरीर हूं, वो कह रहा है मम्मी मम्मी इधर करो, पापा ये सुनो ना मेरी सुनो ना, तो क्या होगा, तो शिव बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी, उस तरफ बुद्धि जाएगी, नहीं लगेगा कनेक्शन, पावरफुल नहीं लगेगा। 15 से कितनी, 10 पे पहुंच जाओगे, 8 पे पहुंच जाओगे, कनेक्शन तो मिला नहीं, लाइट तो मिली नहीं, आप बात करना चाह रहे टेलीफोन पे, शिव बाबा उधर से क्या आ रहा है, घूंघू की आवाज आ रही है, बीच में गड़बड़ आ रही है ना, कनेक्शन आ ही नहीं रहा, शांति प्रेम खुशी आ ही नहीं रही। और सुबह बैठते ही क्या होगा, एकदम से बैठे और एकदम लाइन लगेगी, फर्स्ट क्लास लाइन, क्लियर हॉट लाइन है ना। जैसे बैठोगे एकदम ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद भरना शुरू हो जाएगा आत्मा में, यहां पर लाइट आती जाएगी, लाइट आती जाएगी, भर जाएगा पूरा, आत्मा चमकने लगेगी, एकदम चमकने लगेगी, जैसे बल्ब जो बुझने जैसा था एकदम लाइट लाइट हो जाएगा और बॉडी की एक सेल में फैल जाएगा। और साथ साथ क्या होगा, जैसे ही आनंद की स्थिति पहुंचेगी, यहां पर 17 हार्मोन है, 9 हाइपोथैलेमस में, 8 पिट्यूटरी में, 17 हार्मोन टोटल निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे किसी गांव में सुबह सुबह पानी आता है ना, सिर्फ 4 से 5 ही पानी आता है, तो हमारे यहां भी 4 से 5 ही वो समय है जब हम आनंद को एंजॉय कर सकते हैं। और एक बार आनंद आया तो ये हार्मोन निकलने शुरू हो गए, और एक बार हार्मोन निकल गए तो अगले 24 घंटे के लिए आपका शरीर क्या होगा, फर्स्ट क्लास हार्मनी, हार्मनी में आपस में सामंजस्य स्थापन हो जाएगा पूरा सेल्स का। और सारा जैसे कोटा सुबह निकल आया, उसके बाद तो 24 घंटा आपकी बॉडी ठीक चलती रहेगी, ठीक काम करेगी, एकदम एक्यूरेट, जो चाहोगे वही होगा। अभी क्या होता है, जो चाहते हैं वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हैं वो होता है। उसका कारण अमृतवेला कमजोर है, सुबह शक्ति भरी नहीं है, चार्ज नहीं किया है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्तियां अंदर भरी नहीं है, इसलिए क्या हो रहा, सारा दिन सहन करना चाह रहे हो, सहन नहीं हो रहा है, समान लेना चाहते हो, किसी बात को समान ही रहे, मुंह से निकल रही है बार बार, पेट में दर्द हो रहा है, निकले निकले, वो बात पची नहीं, बाहर निकलना चाहती है, सामना नहीं कर पा रहे हो, सहयोग नहीं कर पा रहे हो, परख नहीं पा रहे हो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो, बड़ी बात को छोटा नहीं कर रहे, छोटी को बड़ा कर रहे हो, समेट नहीं पा रहे, फैला रहे हैं, क्योंकि अमृत वेला पावरफुल नहीं किया। और अमृत वेला किसका पावरफुल होगा, जो रात को समय पर सोएगा, समय पर सोएगा और चार्ट भर के सोएगा, अपने मन की सब बातें बाबा को लिख के सोएगा, आज की जो भी हुआ, आज का जो विचार, आज की भावनाएं जो भी आई मन में, उनको एक लेटर लिखेगा बाबा को, मन को साफ करेगा, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी है, साफ दिल मुराद हासिल है। अगर आपका हमारा दिल साफ नहीं है, सच्चा नहीं है, तो हमें शिव बाबा सुबह सुबह कनेक्शन नहीं मिलेगा। और साथ साथ अगर आज के विचार आज की भावनाएं आप लेकर के सोए, तो रात को नींद गहरी नहीं आएगी, डेल्टा स्लीप आएगी नहीं, अल्फा स्लीप में ही रहेंगे, अल्फा माना 8-9 की रिदम रहेगी, सोते समय कच्ची नींद रहेगी, सो रहे हैं आंखें बंद है किंतु पता लग रहा है आसपास क्या क्या हो रहा है सब। सुबह उठ के लगेगा, 4 बजे उठ के लगेगा, अरे अभी तो 4 बज गए, चलो थोड़े देर और सो जाते हैं, और सो करके भी क्या करेंगे, उठ भी जाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी देर में आगे गर्दन, फिर थोड़ी देर सीधी, फिर गर्दन करेंगे, फिर इस तरफ को सोएंगे, फिर थोड़ी देर में इस तरफ सोएंगे, फिर थोड़ी देर में ऐसे करके, तो 45 मिनट में चार पोज बदलेंगे, ये लिखे है ना, नहीं तो अमृत वेला हुआ अमृत वेला, बार बार घड़ी देखते रहेंगे, अरे तो अभी तो 4 बज के 4:30 ही बजे हैं अभी, तो चल 10 मिनट और कर लेते हैं, फिर देखे अरे चार अभी तो 4:35 ही हुए, फिर थोड़ी देर 5 मिनट और कर लेते हैं, नहीं टाइम काट रहे हैं, समय बिता रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। और जिसका अमृत वेला खराब, उसका सारा दिन खराब, नहीं तो अमृत वेला करने के पहले बहुत जरूरी है कि सोने के पहले अपना, भले लेट भी हो रहे हो तो भी अपना चार्ट जरूर भरें, बाबा को लेटर जरूर लिखें, अपने मन की बातें सब लिखें, लिख के साइन करें, फिर बाबा की याद में बैठें, सूक्ष्म वेतन में जाएं, बाबा को अपने लेटर पढ़ाएं, अपने मन का कच्चा हाल जो भी चिट्ठा है उसको सुनाएं, दिखाएं, बाबा देखो आज मेरा ये हुआ, आज मेरे को उसने ये बोला, मुझे ऐसा फील हुआ, आज ऐसी बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, मुझे आज ये बात याद आ गई, जो भी है सच्चे मन से बाबा को सब बता दें। और फिर उसके बाद, क्योंकि साइकोलॉजी के नियम के अनुसार मन साफ ही दो तरह से होता है, या तो बोलने से या लिखने से। किसको बोले, किसको सुनाए, कोई सुनने वाला ही नहीं है, है कोई सुनने वाला, एक बाबा सुनने वाला है, हम ऐसे बोलते तो उस आंत तक पहुंचता नहीं है, लिखने से पहुंचता है। इसलिए बाबा सदा कहते थे बच्चे लेटर लिखो, चिट्ठी लिखो, अपनी सर्वकर्म कहानी मुझे लिख के दो। तो ये शुरू कर दें, ठीक है। और फिर बाबा की याद में सोना है। कहां सोना, कहां पर है? जो अपना बेड है ना वो तो गैरेज है, ये तो कार है ना, शरीर क्या है? कार है। कार को कहां रखते हैं? गैरेज में ना। तो आपका जो बेड है वो तो गैरेज है, और गैरेज में सोना चाहिए। कहां सोना चाहिए? बेडरूम में ना। बेडरूम कहां है हमारा? सूक्ष्म वतन हमारा बेडरूम है, और हमारा बेड कौन सा है? बाबा की गोद, है ना। तो अपने अपनी बॉडी को यहां पार्क करो अपने बेड पे, और फिर क्या करो, अपने बेडरूम में जाओ और कहां सो जाओ? जमीन पे, बाबा की गोद में, ठीक है। और फिर आपको अच्छी नींद, गहरी नींद आएगी, ठीक है। और फिर सुबह उठ के अमृत वेला कर ली, और 8 बजे तक साइलेंस में रहना है। 8 बजे तक किसी से बात, क्योंकि 8 बजे एड्रिनल से यहां से हार्मोन निकलने वाले हैं, वो आपको जल्दी चिंता गुस्सा, अगर वो ज्यादा निकल गए तो जल्दी चिंता गुस्सा होगी, अपने आप ऑटोमेटिक होगी। अगर वो ठीक निकले तो शांति प्रेम खुशी बनी रहेगी। तो इसलिए 8 बजे तक साइलेंस, 4 से 5 योग किया, 5 बजे कोई मुरली की किताब, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ ली, या कोई भी जैसे संपूर्ण पवित्रता किताब है उसका एक पॉइंट पढ़ लिया, विदेही अवस्था वाली पॉइंट किताब का एक पॉइंट पढ़ लिया, अव्यक्त फरिश्ता वाली किताब का एक पॉइंट पढ़ लिया, फिर नहा धो के तैयार हो गए, तैयार होकर 7 बजे से पहले, 2 मिनट पहले मुरली में, 5 मिनट पहले मुरली में आ गए। फिर मुरली कहां सुननी? जैसे बाबा की गोद में ही बैठ के मुरली सुने, बाबा सिर्फ मुझे ही सुना रहा है, वो स्थिति में मुरली सुनो। वो 1 घंटा ऐसी मुरली सुननी कि सारा टाइम वो 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी कहीं बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए। लिखो भी, दादी जी मुरली सुना रहे हैं, बाबा ही उनके मुख से मुरली सुना रहा है, तो लिखते भी जाओ, सुनते भी जाओ, एब्जॉर्व रखो अपने आप को पूरा, है ना। और फिर 8 बजे तक मुरली सुनने के बाद फिर मुख से बोल में आओ, क्योंकि 8 बजे वो केमिकल निकलेंगे, और मन शांत रखा तो 8 बजे तक वो केमिकल कम निकलेंगे और शांति बनी रहेगी, खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे, बढ़िया रहेगा। तो 8 बजे तक का चार्ट अपना पक्का करो, और रात को सोने से पहले ये कर लो। बाकी तो खान पान की बातें हैं, तो आत्मा का स्वास्थ्य हो गया, मन का स्वास्थ्य, ये 8 बजे तक मुरली सुन ली, मुरली से मन साफ हो गया, और तन के लिए शुद्ध सात्विक आहार खाओ, समय पर खाओ, चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ, सुबह आधा घंटा सैर करो, शाम को आधा घंटा सैर करो, सुबह सूरज निकलने के बाद, शाम को सूरज छिपने से पहले, और समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ, और कोई कर्म भोग है किसी डॉक्टर से, किसी फार्मेसिस्ट से, तो थोड़ी सी दवाई खा लो, ठीक है। तो शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, सात्विक माना 7 गुणों से भरपूर, भोजन हमारा कैसा हो? 7 गुणों से भरपूर। पराठा पकौड़ा समोसा बिल्कुल नहीं खाओ, मिठाइयां बिल्कुल नहीं खाओ, वो सब क्या है? घासलेट के माफिक, सब आंतों को ब्लॉक करने वाला। जैसे मिट्टी का तेल होता है ना, अपनी कार में कभी मिट्टी का तेल डालते हो क्या? ये कार है ना, तो मिट्टी का तेल डालो तो कार क्या हो जाएगी? जाम हो जाएगी ना। तो अपने शरीर में कभी भी कोई आपको ऑफर भी करे ना, पराठा खाने को, पकोड़ा खाने को, मिठाई खाने को, भजिया खाने को, समोसा खाने को, है ना, मिठाइयां खाने को, दूर से हाथ जोड़ दो कि ये मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, सब जाम हो जाएगा। 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में अगर कचरा जाएंगे, जम जाए तो कैसे काम करेगा हार्ट? काम करेगा? कभी नहीं खाओ। फल खाओ, सब्जियां खाओ, अंकुरित खाओ, ताजा खाओ, चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ, और फिर सैर भी जरूर करो आधा घंटा सुबह शाम, ठीक है। और सो टाइम पर सोना भी जरूरी है, अच्छी नींद करना भी जरूरी है। 3 साइकिल नींद की अच्छी हो जाए, 5.5 घंटा सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, है ना, उसमें आलस नहीं करना चाहिए कभी भी, कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। और दवाइयां जो है वो भी कभी कभी, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो उसकी भी आधी गोली, एक गोली जो बनती है वो खा लो, ताकि हिसाब किताब वो भी डॉक्टर से भी चुप्त हो जाए, नहीं तो डॉक्टर भी बहुत, उसका हिसाब किताब बहुत खतरनाक होता है फिर, है ना, ठीक है। तो इसलिए इतना सा भी कर लो। तो आत्मा का स्वास्थ्य हो गया सुबह सुबह अमृत वेला, मन का स्वास्थ्य हो गया मुरली, और तन का स्वास्थ्य क्या हुआ? शुद्ध भोजन, शुद्ध सैर, शुद्ध नींद, और शुद्ध दवाइयां, वो भी बाबा की याद में। दवाई दवाई खाते थे, रो नहीं, कई लोग दवाई खाते खाते रोते हैं, है ना, रोना नहीं है, ये भी मेरे हिसाब किताब है, प्यार से बाबा की याद में। गोली खाने का मौका भी अभी मिला है, सारे 5000 साल में सिर्फ 50 साल ही गोली खाने को मिलती है, अब गोली नहीं खाई तो क्या किया इस दुनिया में आके, है ना। तो गोली खाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, गोली भी प्यार से भावना से गोली खाओ, ठीक है, तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट सभी बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, ठीक है, और फिर जाके सभी अपना चार्ट भर के बाबा को चिट्ठी भी लिखना और फिर बाबा की गोद में सोना, और सुबह सुबह सभी पावरफुल अमृत वेला करने यहां पहुंचना है ना। आज कल सुबह दादी जी यहां पर आएंगे, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि दादी आके स्वयं हमें अमृत वेला योग कराते। ओम शांति।